जीवन कहानी।
हमने यहोवा को कभी ना नहीं कहा।
कैथरीन लोगन की जुबानी। तूफान की वजह से नदी कीचड़ कीचड़ हो गई थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर भी अपनी जगह से हिल गए थे। पुल भी टूटकर बह गया था।
मैं, मेरे पति हार्वी और हमारे साथ आमिस भाषा का एक अनुवादक नदी के किनारे खड़े थे। हम बहुत डरे हुए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम नदी कैसे पार करें।
नदी के दूसरी तरफ खड़े भाइयों को भी हमारी चिंता हो रही थी। फिर किसी तरह नदी पार करने के लिए हमने अपनी गाड़ी एक ट्रक के पीछे चढ़ाई,
लेकिन हमारी गाड़ी को बांधने के लिए कोई रस्सी या जंजीर नहीं थी।
ट्रक नदी में उतरा और धीरे धीरे उसे पार करने लगा। ऐसा लग रहा था कि किनारा मीलों दूर है। हम पूरे रास्ते प्रार्थना करते रहे और आखिरकार सही सलामत पहुंच गए। ये 1971 की बात है। उस वक्त हम घर से हजारों किलोमीटर दूर ताइवान के पूर्वी तट पर सेवा कर रहे थे। आइए मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हम यहाँ कैसे पहुंचे।
यहोवा के लिए प्यार बढ़ा। हार्वी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर मिडलैंड जंक्शन से थे।
सन 1930 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में बहुत गरीबी थी। उनके परिवार ने इसी दौरान सच्चाई सीखी। हार्वी के 3 भाई थे और वो सबसे बड़े थे। जैसे जैसे हार्वी बड़े हुए, यहोवा के लिए उनका प्यार बढ़ता गया और 14 साल की उम्र में उन्होंने बपतिस्मा लिया। एक बार एक भाई ने उन्हें सभा में प्रहरी दुर्ग पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। भाई ने उन्हें समझाया, यहोवा के संगठन में जब कोई आपको काम देता है तो उसे पूरा यकीन होता है कि आप उसे करने के योग्य हैं। उस घटना के बाद से हार्वी ने कभी किसी जिम्मेदारी को ना नहीं कहा। मैं इंग्लैंड से हूं। मैंने, मेरी मां और मेरी बड़ी बहन ने सच्चाई वहीं सीखी। पिताजी हमारा विरोध करते थे।
9 साल की उम्र में जब मैंने बपतिस्मा लिया तो वो मेरे इस फैसले के खिलाफ थे।
मैं पायनियर सेवा करना चाहती थी और एक मिशनरी बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने कहा कि मैं तब तक पायनियर सेवा नहीं कर सकती जब तक मैं 21 की नहीं हो जाती।
लेकिन मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए जब मैं 16 की हुई तो मैंने पिताजी से इजाजत मांगी और अपनी बड़ी बहन के पास ऑस्ट्रेलिया चली गई।
आखिरकार 18 की उम्र में मैंने पायनियर सेवा शुरू कर दी। कुछ समय बाद पिताजी भी सच्चाई में आ गए। ऑस्ट्रेलिया में मेरी मुलाकात हार्वी से हुई। हम दोनों मिशनरी बनना चाहते थे। सन 1951 में हमने शादी कर ली। हमने साथ मिलकर 2 साल तक पायनियर सेवा की। फिर हमें मंडलियों का दौरा करने के लिए कहा गया। हमें पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की सभी मंडलियों का दौरा करना था, जो बहुत बड़ा इलाका था।
एक मंडली से दूसरी मंडली पहुंचने के लिए हमें घंटों सफर करना पड़ता था और बंजर और सुनसान इलाकों से गुजरना पड़ता था।
हमारा सपना सच हुआ। सन 1954 में हमें गिलियड स्कूल की 25वीं क्लास में बुलाया गया। मिशनरी बनने का हमारा सपना आखिरकार पूरा होने वाला था।
हम समुद्री जहाज से न्यूयॉर्क पहुंचे।
गिलियड स्कूल में हमने बाइबल का गहराई से अध्ययन किया। स्कूल में हमें स्पेनी भाषा सीखनी थी।
हार्वी के लिए स्पेनी भाषा इतनी मुश्किल थी कि वो उसे ठीक से बोल ही नहीं पाते थे।
कोर्स के दौरान शिक्षकों ने बताया कि जो लोग जापान में सेवा करना चाहते हैं वो जापानी भाषा सीखने के लिए अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने नाम नहीं दिए। हम चाहते थे कि यहोवा का संगठन हमें बताए कि हमें कहाँ सेवा करनी है। गिलियड के शिक्षक भाई अल्बर्ट श्रोडर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने हमसे कहा, चाहो तो तुम सोचने के लिए और वक्त ले लो। लेकिन जब हमने नाम तब भी नहीं लिखवाए तो भाई श्रोडर ने कहा, मैंने और बाकी शिक्षकों ने तुम्हारे नाम लिखवा दिए हैं, देख लो, शायद तुम्हें जापानी भाषा ज्यादा आसान लगे। और ऐसा ही हुआ। हार्वी जापानी भाषा आसानी से सीख गए। सन 1955 में हम जापान आ गए। उस वक्त पूरे देश में सिर्फ 500 प्रचारक थे। हार्वी 26 साल के थे और मैं 24 साल की थी। हमें कोबे शहर भेजा गया। वहां हमने 4 साल तक सेवा की। फिर हार्वी को सर्किट निगरान की जिम्मेदारी दी गई और हमने खुशी खुशी नगोया शहर के पास सेवा की। हमें यहाँ की हर बात अच्छी लगी, यहाँ के भाई बहन, यहाँ का खाना और खूबसूरत नजारे। कुछ समय बाद हमें यहोवा की सेवा में एक और मौका मिला जिसे हमने ना नहीं कहा। नई जिम्मेदारी लाई नई मुश्किलें। 3 साल तक सफरी निगरान की जिम्मेदारी निभाने के बाद जापान के शाखा दफ्तर ने हार्वी और मुझसे पूछा कि क्या हम ताइवान जाकर आमिस जाति के लोगों को प्रचार करेंगे। आमिस भाषा बोलने वाले कुछ भाई धर्म त्यागी बन गए थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए ताइवान शाखा दफ्तर को कोई ऐसा भाई चाहिए था जो जापानी अच्छी तरह बोलता हो। फुटनोट: आज भले ही ताइवान की मुख्य भाषा चीनी है, लेकिन सालों से जापानी मुख्य भाषा थी, इसलिए ताइवान की कई जातियां जापानी भाषा बोलती थी। फुटनोट समाप्त। जापान में सेवा करके हमें बहुत मजा आ रहा था। इसे छोड़कर जाना हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन हार्वी ने कभी किसी जिम्मेदारी को ना नहीं कहा था, इसलिए हम जाने के लिए तैयार हो गए। हम 1962 के नवंबर महीने में ताइवान पहुंचे। उस वक्त वहां 2271 प्रचारक थे और ज्यादातर भाई आमिस बोलते थे, पर सबसे पहले हमें चीनी भाषा सीखनी थी। हमारे पास सिर्फ एक किताब थी और हमें एक ऐसी टीचर मिली जिसे अंग्रेजी नहीं आती थी, फिर भी हमने चीनी भाषा सीख ली। ताइवान पहुंचने के कुछ समय बाद हार्वी को शाखा सेवक बनाया गया। शाखा दफ्तर का इलाका ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए हार्वी हर महीने एक ही हफ्ते में शाखा दफ्तर से जुड़े काम निपटा लेते थे और बाकी के 3 हफ्ते आमिस भाइयों के साथ प्रचार करते थे। बीच बीच में वो जिला निगरान की जिम्मेदारी भी संभालते थे और सम्मेलनों में भाषण देते थे। हार्वी चाहते तो जापानी में भाषण दे सकते थे और आमिस भाइयों को समझ में भी आ जाता, लेकिन वहां की सरकार का ये कानून था कि धार्मिक सभाएं सिर्फ चीनी भाषा में होनी चाहिए। इसलिए हार्वी ने जैसे तैसे चीनी में भाषण दिए और एक भाई ने आमिस भाषा में उनका अनुवाद किया। उस वक्त ताइवान में सैन्य शासन यानी मार्शल लॉ था, इसलिए भाइयों को सम्मेलन रखने के लिए पुलिस से परमिट लेना पड़ता था। परमिट लेने के लिए काफी चक्कर काटने पड़ते थे। अगर पुलिस वाले सम्मेलन के हफ्ते तक परमिट नहीं देते थे तो हार्वी पुलिस स्टेशन में जाकर बैठ जाते थे और तब तक नहीं हिलते थे जब तक कि उन्हें परमिट नहीं मिल जाता। एक विदेशी को पुलिस स्टेशन में बैठा देखकर पुलिस वाले शर्म के मारे परमिट दे देते थे। हार्वी की ये तरकीब हमेशा काम आती थी। मेरी पहली चढ़ाई। जब हम भाइयों के साथ प्रचार करते थे तो हम घंटों पैदल चलते थे, पहाड़ चढ़ते थे और नदियां पार करते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। उस दिन सुबह सुबह हमने फटाफट नाश्ता किया और दूर के एक गांव जाने के लिए 5:30 बजे की बस पकड़ी, एक चौड़ी नदी पार की और एक खड़ी पहाड़ी पर चढ़ाई की। ये इतनी खड़ी थी कि मुझे सामने चढ़ाई करने वाले भाई के पैर नजर आ रहे थे। ऊपर पहुंचने के बाद हार्वी कुछ भाइयों के साथ प्रचार करने लगे और मैं अकेली एक छोटे से गांव में प्रचार करने लगी जहां जापानी बोलने वाले लोग रहते थे। करीब 1 बजे भूख के मारे मुझे चक्कर आने लगे। जब मैं हार्वी से मिली तो बाकी भाई उनके साथ नहीं थे। हार्वी ने प्रचार में कुछ पत्रिकाएं दी थी जिनके बदले उन्हें मुर्गी के 3 अंडे मिले। उन्होंने एक अंडा लिया और मुझे दिखाया कि उसे कैसे खाना है। उन्होंने उसके दोनों तरफ छोटे से छेद किए और उसे चूसा। हालांकि उसे कच्चा खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने एक खाकर देखा। फिर हार्वी ने मुझे एक और अंडा दिया क्योंकि उन्हें लगा अगर मैं बेहोश हो गई तो वो मुझे उठाकर नीचे नहीं उतर पाएंगे। नहाने का एक अलग तरीका।
एक बार जब सर्किट सम्मेलन की तैयारियां चल रही थी तो एक अजीब सी बात हुई। हम एक भाई के घर रुके थे। उसका घर राजघर के बिल्कुल बगल में था। आमिस लोग नहाना बहुत जरूरी समझते थे, इसलिए सर्किट निगरान की पत्नी ने हमारे नहाने की सारी तैयारियां की। हार्वी को बहुत काम था तो उन्होंने मुझे पहले नहाने को कहा। मैंने देखा कि एक बाल्टी में ठंडा पानी रखा है, एक में गर्म और एक चौड़े मुंह वाला खाली बर्तन रखा है। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सर्किट निगरान की पत्नी ने ये सब घर के बाहर रखा था। और पास में ही भाई सम्मेलन की तैयारियां कर रहे थे। मैंने बहन से एक पर्दा मांगा, वो प्लास्टिक का कुछ लेकर आई, पर उससे सब कुछ आर पार दिख रहा था। मैंने सोचा कि मैं घर के पीछे जाकर नहा लेती हूँ, लेकिन वहां बतख थे और उनके पास जाते ही वो चोंच मारते थे। मैं अजीब दुविधा में थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं नहीं नहाई तो यहाँ के भाई बहन बुरा मान जाएंगे, चलो किसी तरह नहा लेती हूँ। वैसे भी सभी अपने काम में लगे हुए हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। और मैंने नहा लिया। आमिस भाषा में प्रकाशन। हार्वी को एहसास हुआ कि आमिस भाइयों का विश्वास उतना मजबूत नहीं था। वो इसलिए कि ज्यादातर भाई पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी भाषा में हमारा कोई प्रकाशन भी नहीं था। इसी बीच आमिस भाषा की लिपि तैयार हुई थी। हमने फैसला किया कि हम भाइयों को उनकी भाषा पढ़ना लिखना सिखाएंगे। ये काम आसान नहीं था, इसमें बहुत मेहनत लगी, लेकिन हमारी मेहनत का अच्छा नतीजा निकला। पढ़ना लिखना सीखने के बाद भाई बहन खुद यहोवा के बारे में अध्ययन करने लगे। सन 1966 के आसपास आमिस भाषा में प्रकाशन उपलब्ध होने लगे और 1968 से पहली दूर पत्रिका छापी जाने लगी। लेकिन सरकार सिर्फ चीनी भाषा में प्रकाशन छापने की इजाजत देती थी, इसलिए भाइयों तक आमिस भाषा में प्रहरी दूर पहुंचाने के लिए हमने अलग अलग तरीके आजमाए। जैसे कुछ वक्त के लिए हमने प्रहरी दूर की ऐसी पत्रिकाएं निकाली जिनमें मैंडरिन और आमिस दोनों भाषाओं में लेख होते थे। अगर कोई ज्यादा पूछताछ करता तो हमारे पास ये कहने का बहाना होता था कि हम आमिस लोगों को चीनी भाषा सिखा रहे हैं। तब से यहोवा का संगठन लगातार आमिस भाषा में किताबें पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है। इन प्रकाशनों की मदद से हमारे प्यारे भाई बहन बाइबल की सच्चाइयां सीख पा रहे हैं। मंडलियों को शुद्ध किया गया। सन 1960 और 1970 के दशक में आमिस भाषा बोलने वाले बहुत से भाई बहन परमेश्वर के स्तरों के मुताबिक नहीं जी रहे थे। वो बाइबल सिद्धांतों को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। इस वजह से कुछ लोग अनैतिक जिंदगी जी रहे थे, बहुत ज्यादा शराब पी रहे थे और सुपारी और तंबाकू ले रहे थे। हार्वी अलग अलग मंडलियों में जाते थे और भाइयों की मदद करते थे ताकि वो इन मामलों में यहोवा की सोच अपना सके। एक बार हम इसी काम से किसी मंडली में जा रहे थे कि तभी वो घटना हुई जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था। जो भाई नम्र थे वो खुद को बदलने के लिए तैयार थे, लेकिन दुख की बात है कि बहुत सारे खुद को बदलना नहीं चाहते थे। सिर्फ 20 साल के अंदर ताइवान में प्रचारकों की गिनती 2450 से गिरकर 900 हो गई। ये देखकर हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन हम जानते थे कि अगर संगठन में किसी तरह की अशुद्धता हो तो यहोवा की आशीष नहीं रहेगी। कुछ समय बाद सभी मंडलियां शुद्ध तरीके से यहोवा की उपासना करने लगी। यहोवा की आशीष से आज ताइवान में 11,000 से ज्यादा प्रचारक हैं। सन 1980 के बाद से आमिस बोलने वाली मंडलियां विश्वास में मजबूत होती गईं। अब हार्वी चीनी भाषा बोलने वाले भाइयों के साथ प्रचार में और वक्त बिताने लगे। ऐसी बहुत सी बहनें थीं जिनके पति सच्चाई में नहीं थे। उन्हें सच्चाई सिखाने में हार्वी को बहुत अच्छा लगा। जब एक बहन के पति ने पहली बार यहोवा से प्रार्थना की तो मुझे याद है कि हार्वी को कितनी खुशी हुई थी। जब मैंने कई नेकदिल लोगों को यहोवा के बारे में सच्चाई सिखाई तो मुझे भी ये खुशी मिली। मुझे अपनी एक विद्यार्थी के बेटे और बेटी के साथ ताइवान के शाखा दफ्तर में सेवा करने का मौका भी मिला।
उन्हें खोने का गम। हार्वी के साथ 59 साल बिताने के बाद 1 जनवरी 2010 को कैंसर से उनकी मौत हो गई। उन्होंने करीब 60 साल तक पूरे समय की सेवा की। मुझे उनकी बहुत याद आती है, पर मुझे इस बात की खुशी है कि 2 रोमांचक देशों में मैं उनके साथ सेवा कर पाई। हमने एशिया की 2 सबसे मुश्किल भाषाएं सीखी और हार्वी ने तो उन भाषाओं में लिखना भी सीखा। हार्वी की मौत के करीब 4 साल बाद शासी निकाय ने मेरी ढलती उम्र की वजह से ये फैसला किया कि मुझे वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ताइवान छोड़कर नहीं जाऊंगी, पर मैंने हार्वी से सीखा कि जब यहोवा का संगठन हमें कुछ करने के लिए कहता है तो हमें उसे मना नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं वापस ऑस्ट्रेलिया गई। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह फैसला कितना सही था। आज मैं ऑस्ट्रेलेशिया शाखा दफ्तर में सेवा करती हूँ और शनिवार रविवार के दिन मंडली के साथ प्रचार में जाती हूँ। बेथल में मेरा काम चीनी और जापानी भाषा बोलने वालों को टूर कराना है। मुझे इस काम से बहुत खुशी मिलती है। फिर भी मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब यहोवा अपना वादा पूरा करेगा और हमारे अजीजों को जिंदा करेगा। मुझे पूरा यकीन है कि यहोवा अपने सेवक हार्वी को भी जिंदा करेगा, जिन्होंने कभी यहोवा को ना नहीं कहा। लेख समाप्त।